परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
अमरनाथ कैसे बना? अब पार्वती से शंकर भगवान ने कहा कि ये ना सोच के मैं तुझे प्यार नहीं करता था, तू मर जाती थी, तेरी मृत्यु होती थी, मैं बहुत रोता था, टक्कर मारता रहता था तेरे वियोग में। तब पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, और साथ में ये भी शंकर भगवान ने कहा कि ये सभी सिर तेरे, ये जो टांग रखी है हमने, तेरे सिरों की माला बना रखी है, जब तक तू दोबारा मुझे प्राप्त नहीं होती थी तब तक मैं इनको देख देख कर रोता रहता था। तो पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, आपके पास ऐसा मंत्र है जिससे मैं अमर हो सकती हूं, और वो क्यों ना दिया आपने भगवान, मैं मरती ही नहीं, आप इतने कष्ट उठाए आपने, पुणात्मा जो व्यक्ति अपने प्रोसेस से परिचित होता है, अपने प्रोफेशन से परिचित होता है, वो समझता उसके कदर और वैल्यू को। ये मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता। तो भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, अभी तक तेरी आत्मा में इस मंत्र की चाह नहीं बनी थी, इच्छा नहीं बनी थी, प्रबल इच्छा नहीं, और जब तक इच्छा ना बने तो मैं तुझे बहुत कोशिश करता था। आपका याद भी होगी, मैं बहुत बार चर्चा चलाता था कि पार्वती भगवान की भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा की भक्ति से जीव का कल्याण होता है, लेकिन आप तो मेरी एक नहीं सुनती थी और क्या कह देती थी कि मुझे भक्ति की क्या आवश्यकता है, मुझे तो भगवान मिल गया। मैं भी चुप हो जाता था कि अब या आगे बात सुने नहीं। तो पार्वती, तो यहां क्या बताते हैं परमेश्वर कबीर देव जी, ये सब कथाएं हमें सुनाने के लिए, और निष्कर्ष क्या निकाल कर देते हैं उसको सुनोगे तब आपकी आत्मा गदगद होगी। ये कथाएं तो आपने सुन रखी है लेकिन तत् नहीं निकाल पाया कोई संत, कबीर परमेश्वर की रजा से इस दास पे कृपा हुई है। तो जब तक हमें तत् नहीं मिलेगा, जैसे जड़ी बूटियां रखी हैं, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, बनानी अमनाती नहीं, जड़ी रखी है, उनको बनाने की विधि हमें ज्ञान नहीं, खाने की ज्ञान नहीं, तो उनका क्या फायदा रखी हुई का। तो ये कथाएं जो हैं, ये जड़ी बूटियां हैं, अलग अलग रखी हैं, वैसे जड़ी हैं, इनको बनाकर औषधि बनाई जाती है। तो पुणात्माओं, जैसे समुद्र के अंदर समंदर में सीप होती है जिसमें ये मोती बनते हैं। आपने देखे होंगे शंख ले से व्या करें शंख इन ये, तो ऐसा ही एक चपटा सा होता है, एक जीव होता है, उसका ऊपर का शरीर बहुत सख्त होता है और उसमें मोती कैसे बनता है, वो सीप जिस समय उसको चाह होती है समुद्र में एक विशेष गर्मी पैदा होती है और उसके बाद फिर कुछ वर्षा के आसार बनते हैं। तो सीप जो है समुद्र में रहती है और ऊपर सतह पर आ जाती है, जब उसने मोती बनाना हो तो उसमें मोती बनने की प्रक्रिया, उसके अंदर एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न होती है, चाह होते अपने आप उसका मुंह खुल जाता है और ऊपर खुले हुए मुंह खुला हो, ऊपर से वर्षा हो जाती है समाती यानी आसमान की बादलों की, तो उससे वो थोड़ा सा नीर ग्रहण करके और मुंह बंद कर लेती है, उससे मोती बनता है। और उस सीप का मुंह खुलाना हो चाहे सारा सामन बरस जा, मोती नहीं बन सकता। तो यहां परमात्मा बताते हैं कि पार्वती के अंतःकरण रूपी सीप का मुंह बंद था, नारद जी की प्रेरणा से वो मुंह खुल गया और भगवान शिव जी ने फिर उसमें वो मंत्र डाल दिया। तो भगवान शिव ने कहा कि पहले तेरी इच्छा नहीं थी और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, मैं तुझे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता और मैं तुझे दे भी देता बता भी देता तो तेरे जगह साथी नहीं, यू काम नहीं करता, ये व्यर्थ जाता। तो तब भगवान शिव ने कहा पार्वती आज तेरे सीप का मुंह खुल गया, खुला है ये और अब ये मंत्र दूंगा तुझे, पर ये ऐसा अनमोल मंत्र है, ऐसे स्थान पर दूंगा जहां कोई दूसरा जीव भी ना सुन ले, जहां पर अमरनाथ बना हुआ है वहां एक सूखा वृक्ष था, एक सूखा वृक्ष था, कोई पत्ता नहीं था, टहनी शेष थी और वहां जाकर उसके नीचे बैठ गए भगवान शंकर और पार्वती। भगवान शिव जी ने हाथ से तीन ऐसी जोर जोर से ताली बजाई, इतनी आवाज हुई कि आसपास, इतना भयंकर नाद हुआ कि आसपास के कोई पक्षी वहां पर था वो उड़कर भाग गया और कहीं अंडे भी थे आसपास के वृक्षों में, वो भी पक्षी बनकर उड़ गए। उसी वृक्ष की खोगर में, उसी वृक्ष की खोगर में एक थोथे स्थान पर में जो वृक्षों में हो जाता है उसमें एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे, जो स्वस्थ अंडे थे वो तो पक्षी बनकर उड़ गए, एक गंदा अंडा था वो शेष रह गया। भगवान शिव पार्वती जी को वो मंत्र सुनाने लगा। पुण्यात्माओं आपको पता चलेगा आप कितने पुण्यवान हो, वो जो मंत्र पार्वती जी को मिला वो मंत्र आप जी को मिल रहा है, इसके बीच में ये किसी को न मिला, केवल कबीर परमेश्वर जी ने कुछ एक पुण्यात्माओं को दिया था, उनसे भी कह दिया था कि इसको अभी गुप्त रखना, नहीं तो काल के दूत इन मंत्रों को ग्रहण करके मेरी प्यारी आत्माओं को भ्रमित कर देंगे। अब यहां एक प्रश्न और है कि ऐसे स्थान पर मंत्र क्यों दिया भगवान शिव ने और इसको गुप्त क्यों देते हैं। ये ऐसा मंत्र है यदि ऐसे वैसे व्यक्ति को मिल जावे वो इसका जाप साधना करके सिद्धि युक्त हो जाता है और फिर वो ना जाने कितने जीवों को दुखदाई हो जाता है। पहले ये राक्षस क्यों बने, ये सभी भक्त थे साधनाएं करते थे, गुरु होते थे, ये साधनाएं करते रहे लेकिन साथ में त्रुटियां भी करते रहे, नाम से खंडित हो गए, गुरुजनों ने उनको अपने वहां से निष्कासित कर दिया। उनके अंदर उस नाम के जाप करते रहे, सिद्धियां आ गई, उन्हीं भक्तों को के शत्रु बन गए, उनके पास भी सिद्धियां, उनके पास भी सिद्धियां, सारी उम्र लड़ते रहे, ना उनको भक्ति आपकी ना करने देते थे। आपने सुर असुरों का युद्ध खूब सुना पुराणों में, और अधिकारी जो होता उसके मुख से सुना हुआ ज्यादा असर करता है। तो वहां पार्वती जी को भगवान शिव ने वो मंत्र दिया। अब जो ही वो पार्वती जी को भगवान शिव जी कमलों की सतीठी बता रहे थे कि मूल कमल में गणेश जी का वास है, हमारा ये शरीर कबीर परमेश्वर जी ने ये सब ज्ञान हमें दे रखा है, उसी का कुछ आंशिक ज्ञान शिव जी को था, क्योंकि उनको भी परमात्मा आकर मिले थे, उनको ज्ञान दिया था। तो हमारा ये जो बॉडी है, शरीर है, प्रत्येक प्राणी मनुष्य का, स्त्री या पुरुष का, तो इसके अंदर चैनल लगे हुए, चैनल जैसे टीवी में चैनल होते हैं, तो ऐसे हमारे शरीर में बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर की साइड में एक बहुत ही सूक्ष्म वस्तुएं बनी हुई हैं, छोटी छोटी नाड़ियां हैं, आंतरी सी है, और इस जहां ये नीचे गुदा के पास जाकर के एंड होता है बैक बोन का, रीढ़ की हड्डी का, उससे दो उंगल ऊपर अंदर की तरफ एक कमल बना हुआ है, गणेश जी उस वाला चैनल समझ लो, उसमें चार पंखड़ी हैं, लाल रंग है, और उसका एक मंत्र है जो आपको दिया जाता है, इस मंत्र के प्रभाव से वो कमल चार्ज होता है, और चार्ज होने से फिर धीरे धीरे वो छोटी छोटी आंतड़ी सी है, वो धीरे धीरे उनके अंदर वो उकसने लगती हैं, जैसे ब्लैडर में हवा भरते हैं, फिर वो धीरे धीरे फूल जाता है, और पहले वो चिपका होता है। तो भक्तिहीन प्राणी के ये सभी यानी चैनलों के, कमलों के ये सभी कमल जो हैं ब्लैडर की तरह खाली हो चुके हैं, पहले जन्म जन्मांतर में कुछ भक्ति की थी वो सब समाप्त कर चुके हो, तो इस मंत्र से ये भर जाता है, दोबारा चार्ज होता है, इसमें आवासी भर जाती है, ये चार्ज हो जाता है। तो बताया कि मूल कमल, फिर उससे दो उंगल ऊपर स्वाद चक्र है, जहां सावित्री और ब्रह्मा जी का वो चैनल बोला जाता है, कमल है। अपुनात्मा, जैसे कोई भी कार्यक्रम कहीं हो रहा है स्टूडियो में, उस चैनल के, उसके टीवी चैनल के अपने कार्यालय में, और वहां से टीवी में दिख रहा है, ऐसे ही जैसे भगवान, जैसे श्री गणेश जी के लोक में जो भी क्रिया कार्य हो रहा है, उसको आप गणेश जी वाले चैनल को ऑन करके उसमें देख सकते हो। ऐसे ही सावित्री ब्रह्मा जी का एक लोक है जहां वो रहते हैं, उसमें जो कुछ भी हो रहा है उस के कार्यक्रम को, वहां की सब व्यवस्थाओं को आप इस सावित्री ब्रह्मा वाले स्वाद चक्र रूपी चैनल में इसको ऑन करके, चार्ज करके, इसमें या इसको फुल करके देख सकते हो, ऑन हो जाता है। फिर नाभि कमल है जिसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लोक की सारी जो घटनाएं हैं वहां सारा दृश्य वहां देखा जा सकता है, उसका एक मंत्र आपको दिया जाता है। फिर हृदय कमल है, यहां पर भगवान शिव के लोक में जो कुछ भी हो रहा है इसके अंदर हम देख सकते हैं जब ये आपका ऑन हो जाएगा। फिर कंठ कमल है, ये कंठ, यहां तो ये कंठ है, इसके पीछे है ये, जहां रीढ़ की हड्डी आकर थोड़ी सी बैंड होती है, इससे पहले यहां इस दुर्गा जी का ये कमल है, चैनल है, तो दुर्गा के लोक में जो कुछ भी कार्य हो रहा है उसको आप यहां देख सकते हो। उसके बाद फिर एक दो दल का त्रिकुटी में कमल है, फिर सहस्रार कमल है जहां हम ये हिंदू लोग चोटी रखते हैं। उसका ये कारण तो ये था कि यहां पर सहस्रार कमल है 1000 पंखड़ी वाला, यहां पर इस काल भगवान ब्रह्म का निवास है, उसका लोक है, ब्रह्म लोक है। तो जो आप जी को ये मंत्र दिए गए हैं यही मंत्र पांच, ये प्रथम मंत्र में जो पांच मंत्र हैं बीच बीच वाले फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के, ये मंत्र पार्वती जी को भगवान शिव ने उस स्थान पर दिए थे जहां पर अमरनाथ बना दिया गया, अमरनाथ का मंदिर बना हुआ है। अपुणात्मा पार्वती जी को वो मंत्र मिले, तड़फ के साथ वो जाप करने लगी। अब इससे कितना बेनिफिट होगा कि जब तक भगवान शिव की मृत्यु नहीं होगी तब तक पार्वती की भी मृत्यु नहीं होगी, इतना बेनिफिट इसको मिल गया। अब इतना भी बेनिफिट कहां मिला, भगवान शिव से। भगवान शिव ने वो मंत्र उसको कहां दिया, जहां आज अमरनाथ बना हुआ है। अब वही मंत्र अधिकारी व्यक्ति जिसको आदेश है ये नाम देने का, जहां पर भी बैठकर दे दे वही अमरनाथ हो गया। आपके लिए अमरनाथ ये बरवाला आश्रम है, वो मंदिर अमरनाथ नहीं, वो तो पार्वती के लिए तो था, बाकी तो वहां व्यर्थ में जाते हैं सिर्फ यादगार देखने के लिए। अपना आत्मा जैसे ये दास पहले सत्संग करते थे नगर नगर में जा करके, वहां टेंट लगाते थे और वहां श्रद्धालु भक्त भाई बहन भोजन बनाने के लिए ईंटों की भट्टियां बना लेते थे, चूल्हे बना लेते थे। आप भी भोजन खाते थे, आने वाली संगत के लिए भी प्रसाद बनाते थे, सत्संग होता था, श्रोता सत्संग सुनते थे और जिनको ज्ञान हो जाता था वो उपदेश दीक्षा लेते थे। तो उनके लिए जो जिन्होंने वहां दीक्षा ली उनके लिए वो अमरनाथ था, जहां वो टेंट लग रहा था वो अमरनाथ हो गया, वहां उनको वो अवोग मंत्र मिल गया। अब वहां से हम टेंट उठा करके दूसरे शहर में चले गए, वहां सत्संग किया, पीछे से कोई जाकर के कहता है कि यहां महाराज जी ने सत्संग किया था, आजा दिखा के लाऊंगा, और देख यहां भट्टी, यहां पर हलवा बनाया था, यहां खीर बनाई थी, यहां बैठकर सत्संग किया था और यहां नामदान देते थे। अब उसने चाहे 100 बार देखा वहां कुछ भी कोई नहीं, ना हलवा मिला ना खीर मिले ना ये सत्संग मिले ना नाम मिले, वो तो वहां मिलेगा जहां फिर ये दास बैठा और सत्संग हो रहा हो और सारा भंडारा साथ हो। तो ऐसे जो ये यादगारें हैं ये तो भट्टी और चूल्हे रह गए जिनमें कुछ भी कोई ना, केवल एक यादगार है वहां जो कितने चक्कर लगाते रहो, वो वस्तु नहीं मिलेगी जिसके लिए आप वहां जा रहे हो। तो पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान से आत्मा जागती है, जैसा हमें पहले ज्ञान दिया गया था हमारे पूर्वजों ने उसी को फाइनल मान लिया था, क्योंकि श्रद्धालु विद्यार्थी होता है और मार्गदर्शक जो होता है वो टीचर होता है, गुरु होता है वो टीचर होता है, संत टीचर होता है। अब टीचर विद्यार्थी को जो भी कोई ज्ञान देता है तो विद्यार्थी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो गुरु जी को, वो टीचर को टीचर मानता है, टीचर जो बताता है सही है। तो इन नकली टीचरों ने, इन नकली गुरुओं ने हमारे पूर्वजों को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान दे दिया, लोक वेद सुनाकर उनके जीवन बर्बाद करवा दिए, भूत बनवा दिए। अपुणात्माओं आपको थोड़ी सी वो अमर वाणी सुनाते हैं जो परमात्मा कबीर जी ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ये ज्ञान उसके अंत्यकरण में फीड कर दिया था। इसको सुनकर बड़ा आनंद आता है। शंखों दे धरी तन योनी नोतत के का बीज न भूनी मोक्ष मुक्ति का लखा न भेवा ब्रह्मे पुत्र व्यास सुखदेव। अब सुखदेव ऋषि की उत्पत्ति कैसे हुई इसका भी इसी से संबंध है। अब जैसे पार्वती जी को मंत्र देने के लिए स्थान सेलेक्ट किया था भगवान शिव ने एक सूखा वृक्ष तरवर, उसके खोगर में एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। एक अंडा गंदा था, बाकी स्वस्थ थे वो तो उड़कर चले गए पक्षी बनकर, और एक अंडा जो गंदा था उसी में पड़ा रहा। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये मंत्र सुनाना शुरू कर दिया कि मूल कमल में गणेश जी है, इसका ये जाप कर। भगवान बोलकर सुना रहे थे, शंकर जी पार्वती जी साथ बोल रही थी। फिर कह रहे थे कि दूसरा मंत्र ये बोलो, ये सावित्री ब्रह्मा का मंत्र है, ये जाप ऐसे ऐसे करो। जितनी बार भगवान शिव बोल रहे थे ऐसे पार्वती बहुत एकाग्र चित से सुन और बोल रही थी और कह रही थी हाँ जी हाँ जी आगे चलो, क्योंकि वो अच्छी आत्माएं थी, उनके अंदर इतना गंद नहीं भरा था, उनका तुरंत वो चैनल ऑन होते चले गए। पूर्व के संस्कार भी साथ काम करते हैं। ना भी कमल में बताया कि यहाँ पर इस मंत्र का जाप कर, यहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो ऐसे हाँ हाँ कर रही थी, हूँ हूँ कर रही थी। कुछ देर में क्या हुआ, पार्वती जी की आत्मा एक चैनल में घुस गई। अपने आत्माओं आपने देखा होगा ये ऋषि रोग हजारों वर्ष बैठे रहा करते थे, ये मन टिकन ना दे। इस प्राणी ने 10 मिनट आप भक्ति करते हो, मंत्र करते हो, 10 मिनट भी ना टिकन देता, कभी इधर भागता, कोई ऐसी बात याद दिवा देगा, छोड़ मंत्र, ठा मोटरसाइकिल उड़ जाओ, खड़ा हो मनवाने। तो ये बैठे क्यों रहते थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले संस्कार इनके अच्छे थे, तो ये जो साधना करने लगते थे इनका पूर्व संस्कार से कोई चैनल ऑन हो जाता। जैसे किसी भी ब्रह्मा जी का हो गया या गणेश जी का हो गया या शिव जी विष्णु जी वाला हो गया, तो वो क्या होता था कि उसमें ये आत्मा चली जाती थी। वहां देखे ऊपर के लोगों में तो विघ्न है, यहाँ तो एक सिनेमा देखते हैं 3 घंटे, आप जाते हो भूल जाते हो सब कुछ, और 3 घंटे ऐसे होते जानो 3 मिनट होगी, जो आंख पाड़े देखे जा नाचा कूदी बकवाद। तो ऐसी ही ऊपर के लोगों में उन ऋषियों को पता नहीं था तू किस धक्के खा रहा है, वो देखो किधर अप्सराएं नाच रही हैं। जैसे सोपन सा होता है समाधि हो जाती है, समाधि उसको कहते थे, समाधि लाग गई इसकी, और वो देखा ऊपर सांग समाधि टट्टू लाग गई थी। तो वहां आत्मा जाती है उस लोक में घुस गई इस चैनल के माध्यम से। तो वहां कई औरतें नाच रही हैं, कई झरने बह रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर आतिशबाजी छूट रही है, तो ये देखता रहता है अंदर। तो इस कारण से वो हजारों वर्ष बैठे रहते थे, उस बैठने से उनका तप हो जाता था। और तप से सिद्धियां आ जाती थी, उन सिद्धियों से वो आंडी पाक गए, एक दूसरे ने किसी ने दुख दे दें, किसी ने सुख दे दें अपनी कमाई तक, ऐसे होता रहता। ऐसे ही पार्वती जी का जो आत्मा थी वो चैनल में घुस गई और उसने नहीं पता शंकर जी के बोल रहे हैं। उधर से क्या देखा भगवान शिव ने कि पार्वती जी तो समाधिस्थ होगी और वृक्ष के अंदर से एक आवाज आ रही है, हूं हूं हाँ, तो भगवान शिव ने देखा, जानते हैं, तो भगवान कबीर परमेश्वर जी ने यह ज्ञान दिया है अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को, उन्होंने फिर ये हमें बताया है। क्या बताया? कि वो गंदा अंडा जो था वो स्वस्थ हो गया और उस भगवान शिव जी के मंत्र के प्रभाव से, जैसे वो बोल रहे थे कि पार्वती को कह रहे थे बोल चार बार ऐसे ऐसे, तो उस मंत्र में और एक अधिकारी संत के मुख से सुनकर उसका बहुत असर बनता है, जीव जंतुओं पर भी बनता है। तो वो गंदा अंडा स्वस्थ हो गया और स्वस्थ होकर उसमें बच्चा बन गया इतने ही मंत्र से, और वो तोते का बच्चा ओंकार वर्ण लग गया पार्वती के स्थान पर। तो भगवान शिव ने सोचा कि ये जीव, इस जीव ने मेरा मंत्र चुरा लिया, ये किता बता देगा, इसको मारूंगा। इस उद्देश्य से उसको पकड़ना चाहा तो उस विचारज हो गया था, वो पक्षी आकाश में उड़कर बहुत तेजी से भाग लिया। पीछे भगवान शिव जी पार्वती वहां बैठी समाधि लाए। आगे वेद व्यास जी की पत्नी बैठी थी, उसने जमाई ली, पक्षी का शरीर छोड़कर वो आत्मा वेद व्यास की पत्नी के पेट में चला गया, शरीर में जमाई के माध्यम से, मुख से, और समय आने पर फिर वो संयोग हुआ, उसका फिर अंदर वो गर्भ में बालक बना, फिर सुखदेव रूप में वो महर्षि प्रसिद्ध हुआ, जन्मा। अपन आत्माओं, जैसे ये हमारे एक बीमारी ला रखी है इन नकली गुरुओं ने, कि जैसे आप जी का कोई भी घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर उसके शरीर को सभा करने के उपरांत, अंतिम संस्कार करने के उपरांत, उसकी अस्थियों को गंगा में डाल के आना कंपलसरी बना रखा है। क्यों बना रखा है, किस लिए? और ये कहते हैं तेरे पिता की गति नहीं होगी, तेरी मां की गति नहीं होगी यदि वहां नहीं डाल का होगा, वहां फिर और ठग बैठे, यहां के भेजने वाले एजेंट अपना कमीशन ले लें, और वहां बैठे वो जो गंगा में डलवाएंगे उन अस्थियों ने, वह नारे चार्ज करें। अपन आत्माओं, ये सब अज्ञान के कारण, तत्व ज्ञान के अभाव से हो रहा था। अब क्या होता, जैसे एक व्यक्ति किसी किराए के मकान पर रहता है और उसको मकान मालिक कह देता है भाई मकान खाली कर दे, मुझे आवश्यकता है, तो उस समय वो छोड़ने जी ना करता, और इस मकान में तो यू अपना मान रहा, अपना पर्सनल मान रहा है, इसमें इस मकान में तो यू कई सैकड़ों वर्ष रहता है, तो इस मकान को ये छोड़ना नहीं चाहता, अपना मान बैठता है। उधर से भक्ति ना करने से ये प्रेत बन जाता है, प्रेत बनते ही इसका जो भी अकाउंट है जाते इसको मिल जाता है, कौन सी योनि प्राप्त होनी है, ये भूत बन जाता है। और उधर से क्या होता है कि वो घरवाले उनको फूक फाक कर फूक देते हैं, सवा कर देते हैं, तो वापस वो अपने घर पर आता, वो प्रेत बनकर, घरवाले तो उसको देख नहीं सकते, उसमें आवाज नहीं, वो सुना नहीं सकता, वो वहां धक्के खा के फिर देखता मेरा शरीर कहां है, वो जाता शमशान घाट पे। तो इतना इसको ज्ञान होता है प्रेत को कि ये अस्थि मेरी है, ये नहीं है। तो अगर वहां उसको कोई अपनी अस्थि मिल जाता है, यो हार्ड ना जड़ा हुआ, उसको चिपक जाता मेरा है, यो मेरा नुचकती चिपट जाए उसका। और ये सद ये क्या करते हैं, सेवड़े उन अस्थियों को उठा लाते हैं और वो अस्थि के साथ आता वो प्रेत, फिर वो उसको अपने जंतर मंत्र से जकड़ लेते हैं, अपने अधीन बनाकर फिर वो दूसरों को दुखदायी हो जाते हैं। तो इस कारण से इसका उन्होंने निपटारा करवाने के लिए नकलियों ने ये सोचा कि भाई इन अस्थियां न उठाकर तुम वहां डालो, ऐसे गहरे जल में डाल दो जहां ये पितर प्रेत बनकर आवे तो उसका हाथ ना लगे, वो चपके नहीं और वापस तुम्हारे घर ना आ जावे, आसपास भी ना रहे। उनका उद्देश्य ये था। अब उससे क्या समाधान हो गया, वो तो बनना था वो बन चुका है, प्रेत बनना था या कोई पशु पक्षी बनना था वो तो बन चुका है अपने पूर्व संस्कार से। अब वो नकित ठाकर डाले जाओ, प्रेत वो बन ही चुका है। तो ऐसी हमारी ऐसी वृत्ति है इस जीव की, उसी आधार से सुखदेव वाली आत्मा का संस्कार ऐसा था कि उसने गंदे अंडे में ही ऐसे उसका अंडा नष्ट हो गया और उसका वो चिपका रहा अपना जान के, मेरा है मेरा है। यह वृत्ति है हमारी अपनात्मा, जैसे बच्चा गर्भ में आते ही माता को अपनापन हो जाता है और किसी कारण से वो गर्भपात हो जाता है तो बहुत रोती है कि मेरा था मेरा था। ऐसे ही उस अंडे को गंदा होने पर भी उसने अपना मान रखा था, चिपका बैठी थी आत्मा मेरे, उसका संस्कार ऐसा था। और ये सारा कुछ जो होता है पूर्व निर्धारित संस्कारों से ही होता है। जो पार्वती जी को मंत्र मिला ये भी पूर्व संस्कार थे इसके और पूर्व निर्धारित था। अब केवल कबीर परमेश्वर ही उसको परिवर्तन कर सकता है और किसी पर परिवर्तन नहीं होना। तो ये सारा कुछ हुआ तो पूर्व संस्कार से, लेकिन घटना ऐसे घटी हो तो वो अंडे को जो चिपका में बैठा था वो सुखदेव वाली आत्मा, इसी प्रकार जो ये अस्थियां उठाने की बीमारी लगाई इन लोगों ने इस उद्देश्य से लाई कि जब जय उल्टा आ गया तो वहां शमशान घाट पर बैठा रहेगा। और आपने देखा होगा कि भाई कई क्या कहा करते थे कि भाई ये लड़का वहां जा रहा था और इसकी ठोकर लगी किसी का किसी वस्तु का, उस दिन से बीमार है, तो यो भूत चिपटा रहा है उसके अपने अस्थि का और उसका ठोकर लगी, फिर ये चौधरी था ये, फिर अब कैसे मेरा ठोकर मार दी, इसके अंडी बनाते लकड़ता ही नहीं, फिर गदा बन गया है। तो वहां उनको दुखदायी होता था, इसलिए उन्होंने ये समस्या हल कर दी कि अस्थि यहां से फेंक दो कि तय यो एक स्थान पर ना टिप चिप क्या रहा, अंडे जा धक्के खानता की तो और धक्के खा लेगा बाहर चला जाएगा। ये उद्देश्य था। और पुण्यात्माओं कहते हैं यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते, सतगुरु की संगत करते, ना तो आपने भूत बनना ना अस्थियां उठाने की आवश्यकता। और आपने यो नाम ले रखा तो कितनी ठोकर लागो, कितने कुछ जाओ चौराहे पर गांडो तुम और बर्फी खाते हुए, आपके निकट कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये समर्थ की शक्ति है। एक भक्त बता रहा था कि मैं अपनी किसान था वो, कि अपनी बहन के गांव में ससुराल में गया हुआ था, उनका जमीन ज्यादा थी, मैं अपने बैल ले गया था उनकी खेत की जुताई करवाने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो मेरी ड्यूटी उन्होंने दूसरे खेत में लगा दी और बहन का बटेव जो बहनोई था वो दूसरे खेत में अपना काम कर रहा था। उस खेत के पास में एक छोटा सा तालाब था, तलैया थी, जोड़ी थी, उसमें एक छोटी सी मंड ही बना रखी थी। और कोई वहां पर एक 5 किलो एक बेली होती थी, 5 किलो गुड़ का एक ही आइटम बना दिया करते, पेड़ा सा इतना बारा वो चढ़ा गया वहां उस वो को पीर प्यार था, पीर की मड़ी थी। वो कहने लगा मैं बैलों को पानी पिलाने के लिए जब उस गया वहां तालाब में तो मैंने देखा इतना गुड़ धरा बहुत सुंदर, मैंने वो उठा लिया, कुछ तो आप खाया कुछ कूट छेद कर बैलों को खिला दिया, सारे में डाल दिया और नाम मैंने ले ही रखा था परमेश्वर कबीर जी का, आपके परमात्मा की शरण आ चुका था। तो फिर मुझे वो इतनी दूर दिखाई दिया, एक दो पैर के समय वहां बैठा था मैं, कम से कम 50 फुट की दूरी पर एक 3-1 फुट का आदमी, सफेद दाढ़ी सफेद कपड़े और नौ आंखें लाल कर रहा, कहने लगा तो ठाडे की शरण में था ना, तेरा बक्कल तारू उतने मेरा गुड़ खा दिया। तो तगड़े की शरण में था इसलिए बच गया, ना तेरा बक्कल तारू मार, तने मेरा गुड़ खा लिया, ये भूत बेटी के बाप खावे कुत्ते, उनको भी यही आभास है कि मेरा है, बस दरदियाड़े मेरा हो गया भी। तो पुण्यात्मा आप समृत की शरण आ चुके हो, ये तो आपका असर करें को नहीं। अब यहां वाणी सुनाते हैं परमात्मा। सतगुरु मिले महादेव बंका, 84 की मिटी न शंका, 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुंड माला गललाई, अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थिर भया नहीं भोरा, नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाही, पिंड पर धान किए कै बारी, खुली नहीं ये मुक्ति द्वारी, रुंडमाला शिव गले, गिरजा के सिरसी ही सी, भक्ति दुराई देव को ना परस्या जगदीश, तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला, बहुतक पर ले हो जाई, लंबी उम्र शिव कलयुग में, दीर्घ आयु है शिव अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल त्यागी, मूल मंत्र नहीं नाम सुनाया, ताते कल्प होवे तेरी काया। महादेव देवन पति देवा, जाकी करी न गौरी सेवा, कर बंधन कर शीस नमावो, तन मन अर्पो शीस चढ़ावो, शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहूं गौरी माता। अब यहां गरीबदास साहेब जी ये जो वाणी बोल रहे हैं, ये जो नारद ने बोली वो बोल रहे हैं, ये ना समझा समझ लेना आपके इसमें लिखा है कि शिव जी देव उनके देव है, नहीं, ये नारद जी की बुद्धि के सतर से बता रहे हैं कि वो भगवान शंकर को देवन पति देव मान रहा था, सबका मालिक है। चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा, कमल रूप देवी दिल की न्या, नारद मुनि उपदेशी चीन्या, जद आए शिव मंदिर अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा, चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीश किए रुंडमाला, मोसे भक्ति दुराई देवा, मैं जानी नहीं तुमरी सेवा, मोसे भक्ति दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निज दामी, मैं अबला हूं बाला भोरी, पार निभावो हमरी डोरी, पूर्व जन्म की कथा सुनावो, मूल मंत्र हम शिव गौराओ, मूल मंत्र महबूब का इस सुनाओ मोहि, जुगन जुगन पातक छूटे हैं, छूटत हैं दिल द्रोही, बोल रही भवसागर हम ही, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही, शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विदाता, ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा, गिरजा कहे सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आद गण नामी, नारद मुनि उपदेश समोदम, ज्ञान ध्यान दीना ज्ञान ध्यान परमोदम। अब यहां जब पार्वती जी भगवान शिव के चरणों में गिर कर रोने लगी, तो भगवान शिव जी क्या कहते हैं, शीश पकड़ सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विदाता। पार्वती के सिर को छूकर भगवान शिव जी ने कहा कि मेरी बात सुनो देवी, ऐसा कौन भगवान मिल गया तुझे, आज तेरी ऐसी बुद्धि बदल दी, ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवारा, गिरजा कहे सुनो शिव स्वामी, तारण तरण आदि घन नामी, नारद मुनि उपदेश सुमोदम, मेरे को नारद जी ने ये सारी बात बता दी, और दीना ज्ञान ध्यान परमोदम। अपुन आत्माओं, क्या बताते हैं भगवान शिव जी, बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमरी वानी, के चलो जंगल में चलेंगे बनखंड में, ऐसे स्थान पर बैठेंगे कोई पक्षी भी हमारी बात ना सुन ले, हमारी वाणी ना सुने। जहां एक सुख्या तरवरता क्या शिव को आसन तहां वहां राख्या, जहां एक गंध अंड तिस्माही जिस जानत है समृत साई। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने ना हमरी वानी, जब शिव कर से लाई तारी उड़गे पक्षी नर और नारी। अब क्या बताते हैं, आसन पदम लगाओ गौरा, मेर दंड सूदा कर भौरा। अब कहते हैं आसन पदम लगा पार्वती, और मेर दंड को मेरुदंड भी कहते हैं इसी को, बैकबोन को, रिंड की हड्डी को, कि इसको सीधा कर ऐसे। चंद्र लगन में सूरत लगाओ, सूरज सुर को बंद थमाओ, गौरी आदि गणेश मनाओ, हो किलियम किलियम ध्यान लगाओ। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखानो। ये प्रथम कमल है, मूल कमल जिसको बोलते हैं। दूजे स्वाद चक्र को देखो, सेतु वर्ण रंग सूरत विवेको, सठ पंखड़ी प्रीत परेवा, जहां बसते हैं गंधर्व देवा। तो ये सब वो नामों का जानकारी दे रखी इसमें, जो अदास आपको देता है पार्वती जी को भगवान शिव ने, यही मंत्र दिया। अपुणात्माओं, अब यहां बताया जा रहा है कि समर्थ पूरा गुरु हो, जिस सत्र का भी हो। जैसे कोई प्राइमरी कक्षा का टीचर है तो वो भी टीचर पूरा हो, और जैसे कोई मैट्रिक यानी दसवीं तक का कोई अध्यापक है वो भी अपने सिलेबस से ठीक परिचित हो, वही भला कर सकता है विद्यार्थियों का। तो ऐसे ही भगवान शिव ने पार्वती जी को प्राइमरी तक का ज्ञान दिया था, इतना ही टीचर थे वह। अब जैसे आपको बताया कि सुखदेव ऋषि की बैटरी चार्ज होगी भगवान शिव से मंत्र सुनकर, और तोते में एक आदत होती है ये नकल बहुत करा कर, उसने उसके कुछ जाप किए जिस कारण से उसकी बैटरी चार्ज होगी, और फिर वो मां के गर्भ में रहा 12 वर्ष तक, व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहा। उधर से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को चिंता बन गई कि अभी 9 महीने के अंदर बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए, और व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव है, वो आत्मा है, वो अभी बाहर नहीं आया है, और ये तो एक परंपरा बिगड़ जाएगी यदि माता गर्भ में, ये तो 9 महीने में दुखी हो जाती है बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखने में ही, 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में बच्चे रहेंगे तो बहुत परेशानियां हो जाएंगी, परंपरा बिगड़ेगी। भगवान शिव गए फिर बाद में कि इन ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि आप ही ये काम कर सकते हो, उसको निकालो जाके, और आप ही के कारण उसने ऐसा शरण मिली है, ऐसी शक्ति मिली है। भगवान शिव वहां गए कि व्यास की पत्नी, तेरे पेट में मेरे ज्ञान का चोर है, मैं उसको खत्म करूंगा, मारूंगा। तो व्यास जी भी आ गए। व्यास जी ने कहा भगवान आओ, धन्यवाद हमारे आपका आगमन हुआ, आप कैसे आए, सारी कहानी बताई कि इसने ऐसे ऐसे मेरा अमर मंत्र सुन लिया, ये अमर हो गया, और इसने धोखे से मेरे से ज्ञान सुन लिया, और मैं इसको मारूंगा, खत्म करूंगा, आपका गर्भ नाश करूंगा आपकी पत्नी का। अब उसने कहा व्यास जी ने कहे बोले नाथ, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपके मंत्र सुनकर इसने जाप कर लिया, जाप से ही अमर हो गया, अमर को आप मारोगे कैसे, अब शिव जी फेल हो गए, कहा भाई बात तो ठीक है। इतने में ब्रह्मा और विष्णु भी आ गए कि भाई शिव जी तो हो लिया फ्यूज। तब उन्होंने कहा कि भाई सुखदेव, तीनों आने मिलकर कहा सुखदेव तू बाहर आ जा। सुख माने तोता होता है, हे तोता राम तू बाहर आ जा, क्योंकि तोते के शरीर को छोड़कर उसमें गया था, इसलिए इसको सुखदेव कहने लगे। तो सुखदेव ने कहा कि मुझे अब ज्ञान है, क्योंकि मां के गर्भ में इस प्राणी को पिछला पूर्व जन्मों का और आगे क्या होगा इसके संग में सारा ज्ञान होता है। तो सुखदेव गर्भ से बोला कि भगवान मैं बाहर नहीं आ सकता, बाहर आते ही आप जी के तीनों के गुण या त्रिगुण में माया जीव को मोहित कर देती है, बेहोश कर देती है। अब मुझे सब पता है कि मैं पिछले जन्मों में कितना कष्ट उठाया करता था, भक्ति ठीक बनी नहीं, मैं फिर बकवाद करके मरता रहा, असंग जन्म हो गए मैंने दुख पाते ने, अब मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे डर लगता है। तुम अपनी एक शर्त पर आ सकता हूं, यदि आप तीनों के तीनों अपनी जो आपके अंदर से निकल रहे हो एक के गुण की तरंग, इनको कुछ समय के लिए रोक लो। अब उन्होंने कहा भाई ये हमारे बस का भी कोई ना, हम इसको रोक लें, हम केवल एक सांस कुछ देर सेकंड के लिए रोक सकते, एक सेकंड के भी कुछ हिस्से के लिए, नहीं तो हमारा शरीर पाट जाए, तो बीपी के ऐसा काम है, हम अधिक देर नहीं रोक सकते इस प्रभाव को, हमारे हमें भी मालूम है। तो सुखदेव ने कहा कि ठीक है कुछ सेकंड के लिए रोक दो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश वहां से चले गए, वहां से उन्होंने कुछ सेकंड के भी कुछ हिस्से में उसको रोक पाए। इतने में सुखदेव बाहर आ गया, मां के गर्भ से जन्म बाहर निकल गया। अब व्यास जी देख रहे हैं कि पत्नी को कुछ पीड़ा हुई, बच्चा होने वाला है, सुखदेव निकला बाहर एकदम 12 वर्ष की आयु का, बाहर आके एकदम शरीर बड़ा हो गया उसका, और अपनी ओर नाल कंधे पर डाल लिया और सुंडी का जेर लटका करे जिससे मां की नाभि से कनेक्शन होता है। व्यास जी कहने लगे बेटा ए पुत्र मेरी बात सुन, बेटा मेरी बात सुन, अब सुखदेव ने देखा भी नहीं अपनी मां और पिता की तरफ, पीछे से ही बोल रहा है कि ऋषि जी एक लेवा एक देवा दूतम कोई किसी का पिता नहीं पुतम। कहने लगे ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया, ना मेरा कितनी बार मैं तेरा बाप मिल लिया व्यास जी, अब मुझे वो याद है, वो ताजा है सारी याद, अब मैं इस बीमारी में पैर ना दू, ना दर्शन दिखाऊं ना देखूं, हो सकता मेरी ममता में हो जा, मैं फंस जाऊंगा। नो कहके वहां बैटरी चार्ज थी उसकी आकाश में उड़ गया और कहीं दूर जाकर आप अपनी ओर नाल काट के और कपड़े अपना पेड़ की छाल लपेट के और ला गया भक्ति करण। बिना गुरु के और फिर वो चार्ज बैटरी थी उसकी पिछले जन्मों की, उससे आकाश में उड़ने की सिद्धि उसमें आ गई थी। तो पुण्यात्मा गुरु बिन माला फेरते है, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अब पिछले जन्म के संस्कारों वश सुखदेव ऋषि जी ने गुरु की आवश्यकता इसलिए नहीं समझी क्योंकि उसके अंदर सिद्धि विद्वान थी, पिछले जन्म की बैटरी चार्ज थी। अपुणात्माओं आप देखते हो कि किसी गांव में किसी संत का कोई मंदिर आश्रम बना हुआ है, यादगार बनी हुई है, उसकी क्या लीलाएं हैं कि ये संत जी छोटे से थे तभी से इन्होंने ऐसी चमत्कार कर दिए थे, ऐसा कर दिया था, वहां ऐसा कर दिया था। अब वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी साधक सिद्धि वाले थे, अगले जन्म में वो सिद्धियां कुछ बैटरी चार्ज थी और वो सब खत्म होली, फिर वो क्या बन गए? अब वो वहां भोग लगाते हैं, वो मंदिर में बैठकर भूत बन गए, वो भूत बन गए। तो ऐसे ही ये सुखदेव ऋषि आकाश में उड़ जाता था, एक कॉमन स्वर्ग है उसमें पहुंच जाता था। वहां गए व्यक्ति कोई आम व्यक्ति तो होता नहीं, तो सब ऋषि महर्षि वहां देवता उसका आदर करते थे, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष हैं, देखो यहां आकाश से उड़कर स्वर्ग में आ जाते। इसी धोखे में एक दिन सुखदेव जी विष्णु जी के लोक में चला गया। विष्णु जी के लोक में जब ये पहुंचा तो इसने स्वर्ग में जाने की इच्छा व्यक्त की, वहां के स्वर्ग में, विष्णु लोक के स्वर्ग में। स्वर्ग क्या चीज है? प्रत्येक शहर में जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, आजकल समझना बहुत आसान है, जैसे प्रत्येक शहर में सरकारी ये बने हुए हैं टूरिज्म, तो वहां केवल अधिकारी ही जा सकता है, अन्य नहीं जा सकता, उनमें रुक नहीं सकता। तो ऐसे उसने जाके अंदर जाना चाहा विष्णु के लोक वाले रेस्टोरेंट में, स्वर्ग में। वहां के नौकरों ने, पहरेदारों ने, पार्षदों ने पूछा, ऋषि जी आपका गुरु कौन है, अर्थात आप कौन से महकमे में अधिकारी हो? तो उसने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है। तो उन्होंने कहा पार्षदों ने, सेवादारों ने, कि आप प्रवेश नहीं कर सकते स्वर्ग में। भगवान विष्णु जी का आदेश है कि जो गुरु नहीं है, जिनका गुरु धारण नहीं कर रखे, यार गुरु भी अधिकारी हो, तब तक आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। उसने जिद कर ली कि तुम अपनी बात बनाते हो, भगवान का आदेश नहीं हो सकता। मैं वहां भी जाता था, कोई नहीं रोकता था। उन्होंने कहा जी वहां नहीं रोकते होंगे, पर यहां रोका जाता है। तो कुछ देर के बाद उसने कहा मुझे विष्णु जी से मिलाओ। अंडी पाक के गया था वो तो यूं कि भगवान विष्णु मुझे सीने से लगाएंगे और कहेंगे वाह वाह ऋषि, देख कहां से उड़कर आकाश में उड़कर आ गया। न्यू आना को आम व्यक्ति थोड़ा आ सकता है, उसकी अपनी सोच थी। पार्षदों ने जाके भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, एक सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं और वो प्रवेश करना चाहते हैं रेस्टोरेंट में, होटल यानी स्वर्ग में, आपका क्या आदेश है? विष्णु जी ने कहा तुमने रोका क्यों उसको? कि जी उनका कोई गुरु नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा फिर ठीक है, फिर नहीं प्रवेश करने देना। तो पार्षदों ने कहा, पहरेदारों ने कहा, भगवान वो जिद लगाए बैठा है कि मैंने तो प्रवेश होना है, या गुरु विष्णु जी से कहलवा दो जैसे आपकी आज्ञा। विष्णु जी बाहर आए अपने महल से। सुखदेव जी ने तो ये सोचा था भगवान बड़े खुश होंगे, सीने से लाओगे। और भगवान विष्णु ने बाहर आते ही कहा कि ऋषि जी यहां किस लिए आए तुम? पुनात्माओं, सामने वाले के बोली से पता लग जाता है ये किस भाव से बात करें। तो सुखदेव जान गया भगवान का मूड ठीक नहीं। तो कहा कि भगवान मैं स्वर्ग में कुछ समय रुकने के लिए आया था, इन्होंने आपको क्यों तो भगवान ने कहा विष्णु जी ने कि इन क्यों रोक दिया तेरे को, इन्होंने अंदर प्रवेश क्यों नहीं होने दिया? कि ये कहते हैं तेरा गुरु नहीं है, इसलिए प्रवेश निषेध है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी क्या आपने कोई गुरु नहीं बना रखा? नहीं जी, मुझे मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मुझे आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऋषि जी ये तेरी महान भूल है, जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे आपका पिछले संस्कार समाप्त हो जाएंगे, भविष्य का कुछ बनेगा नहीं, आपको बहुत हानि होगी। और ये हमारा नियम है, बिना गुरु के नुग्रे व्यक्ति को यहां आना भी अलाउड नहीं है, तो आ भी गलत गया। तब उसने समझ लिया भी भगवान ने कहा आदेश हो गया, अभी तो फाइनल बात है यार।